पिछले अध्याय में आपने देखा कि मेरा परिवार जयपुर पहुंच गया है। वेद एक बच्ची को ढूंढ रहा है, माया निराश है और बलवंत वेद को लेकर चिंतित है। सुधीर रुचिका से शादी नहीं करना चाहता और माया वेद को नशीला पदार्थ पिलाने की योजना बना रही है। वेद को दो लड़कियां खतरों से बचाएंगी। वेद मानवी को ढूंढता है और बलवंत वेद की सुरक्षा के लिए एक आदमी को लगाता है। रीना देखती है कि वेदांत अपने ख्यालों में खोया है और माया की योजना पूरी नहीं हो सकी। इस अध्याय में रीना को अपनी माँ और बहन की कमी खल रही है और वेदांत उससे बात नहीं कर रहा है। जब सिया और किया उसे कपड़े और गहने लेने के लिए बुलाती हैं तो वो मौली के कमरे में जाती है जहाँ रूपा और वेदिका भी होती हैं। उसे रुचिका के लिए सामान ले जाना होता है। रुचिका अपनी माँ से रोते हुए कहती है कि उसे ये शादी नहीं करनी है, लेकिन उसकी माँ उसे परिवार की इज्जत के लिए मनाने की कोशिश करती है। नाउ नेक्स्ट। वेदांत तैयार होकर होटल से निकल चुका था। उसने माया को किसी और होटल में बुलाया हुआ था। वो दोनों एक प्राइवेट कैबिन में बैठे बातें कर रहे थे। ऐसा कह सकते हैं कि साजिश कर रहे थे। मैंने इतनी कोशिश की मगर बात ही नहीं बन रही। ऐसा लगता है वेद किसी परेशानी में घूम रहा है जिस वजह से उसका ध्यान मुझ पर नहीं है। और तो और वो रात को अपने कमरे में भी लेट आया। जो मैं करना चाहती हूँ वो हो ही नहीं रहा, माया ने कहा। नहीं तो मैं अपना काम कर देती। कोई बात नहीं, आज एक और लड़की आ रही है। तुम दोनों में से एक तो अपना काम कर ही देगी। तुम दोनों में से कोई एक तो अपना काम कर देगा, वेदांत ने कहा। तभी इस वक्त प्राइवेट कैबिन में दरवाजा खुला और अंदर कदमों की आहट गूंज उठी। कैबिन के अंदर एक हल्की सी धुंधली रोशनी थी। पर्दे आधे खिंचे हुए थे और भीतर बैठा वेदांत अपने सामने रखे ग्लास को धीरे धीरे घुमा रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी ठंडी मुस्कान थी जो उसकी चालाकियों की गवाही दे रही थी। सामने कुर्सी पर माया और रैना शर्मा बैठी थीं। दोनों के चेहरे पर उत्सुकता और हल्की सी बेचैनी थी। वेदांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम दोनों को काम मैं साफ साफ समझा चुका हूँ। किसी भी तरह वेद के ड्रिंक में नशीला पाउडर मिलाना है, सिर्फ एक बार नहीं, रोज, जब तक उसका शरीर उस नशे का आदि न हो जाए। एक बार वो आदत पड़ गई तो फिर खुद मांगेगा और तब वो कंपनी चलाने लायक नहीं बचेगा, कहता हुआ वो मुस्कुरा रहा था। उसके शब्द जहरीले थे मगर बेहद सुनियोजित। माया ने सिर हिलाया पर रैना थोड़ी झिझकी। उसने धीमी आवाज में कहा, मगर मैं तो यहां वेद से शादी करनी है। मुझे उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना है, उसका सब कुछ पाना है। वेदांत हल्का सा हंसा, उसकी आंखों में व्यंग्य चमका। तो और क्या, तुम्हें उसका सब कुछ मिलेगा, प्रॉपर्टी, नाम, सब। सीधी सी बात है, जब वो खुद अपना नशा तुमसे मांगेगा, जब तुम्हें उस जहर की चाबी समझेगा तो क्या तुम्हें छोड़ पाएगा? तुमसे ही तो बंध जाएगा। शादी करना तो मजबूरी हो जाएगी उसकी। तुम जो करोगे उसमें तुम्हारा ही फायदा होगा, रैना ने जल्दी से बीच में कहा। हाँ, मेरी मॉम कमल, उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं लगना चाहिए। वो कभी ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगी। उनका प्लान कुछ और है। वेदांत ने उसकी बात को हाथ के इशारे से काट दिया। तुम्हारी मॉम को इस खेल में घसीटने की कोई जरूरत नहीं। बस याद रखो, ये प्लान हमारे बीच का है। अगर तुम चाहती हो कि कल को तुम्हारा नाम मिसेज वेद बने तो आज तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। रैना ने एक पल आंखें बंद की, फिर धीमे स्वर में सिर हिला दिया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसे वेदांत की बात सही लगी थी। इधर इन्हीं साजिशों से बेखबर वेद सुधीर और दीपक के साथ ऊपर वाले कमरे में बैठा था। सुधीर का चेहरा बुझा बुझा लग रहा था। अरे भाई, अब बता भी दे, इतना मूड क्यों खराब है, वेद ने उसे छेड़ते हुए कहा। सुधीर ने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मुझे शादी नहीं करनी, सच कह रहा हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। पता नहीं डैड को क्या हो गया है, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं। दीपक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की ही नहीं है तो ये तो तुम शादी से मना क्यों कर रहे हो? अगर कोई ऐसी बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो तो बात अलग है। तू पागल है क्या? इतनी अच्छी लड़की है, इतना बड़ा परिवार है और तुझे शादी नहीं करनी? कम से कम घर वालों के बारे में तो सोच, सुधांशु भी अपने भाई को समझाने लगा। वेद ने हल्के अंदाज में माहौल को हल्का करने की कोशिश की। चल छोड़, ऊपर बैठकर टेंशन लेने से अच्छा है नीचे चलते हैं, हॉल में सब लोग होंगे, थोड़ी गपशप करेंगे। वैसे भी तैयार होने में तो अभी बहुत टाइम है। वैसे भी इस वक्त हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी मगर तुम्हारा मूड चेंज जरूर कर सकते हैं। सुधीर ने धीमी सांस खींची और सिर हिला दिया। ठीक है, चलो। तीनों धीरे धीरे कमरे से निकले और नीचे लॉबी में पहुंचे। लॉबी में हलचल थी। बाहर लॉन में सगाई की तैयारियां जोरों पर थीं। सजा हुआ गार्डन, फूलों की मालाएं और हल्की सी बजती इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब कुछ शादी वाले माहौल को और भी चमकदार बना रहा था। तीनों दोस्त लॉबी के एक कोने में सोफे पर आकर बैठ गए। चारों तरफ रिश्तेदार और मेहमान बैठे बातें कर रहे थे। होटल स्टाफ लगातार चाय और स्नैक्स सर्व कर रहा था। वेद ने वेटर को आवाज दी, चाय ले आना। चाय के इंतजार में तीनों आपस में बातें करने लगे। सुधीर अब भी थोड़ा गंभीर था, मगर दोस्तों की मौजूदगी से उसके चेहरे की उदासी धीरे धीरे कम हो रही थी। सुधीर चुप था, मगर वो तीनों एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे। दीपक ने मजाक में कहा, देख भाई, शादी से मत डर, शादी के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। वैसे भी तेरे जैसा हैंडसम बंदा कौन लड़की छोड़ सकती है। वेद ने हंसते हुए जोड़ा, और अगर छोड़ भी दे तो हम है ना तेरे साथ बुरा होने नहीं देंगे। सुधीर हल्की सी मुस्कान रोक न सका। उसी वक्त वेटर गर्मा गर्म चाय लेकर आया और तीनों ने कप उठा लिए। लॉबी में अब भी रौनक बनी हुई थी। चारों तरफ मेहमान बैठे बातचीत कर रहे थे। वेद, सुधीर, दीपक और सुधांशु एक सोफे पर बैठकर हंसी मजाक में बातें कर रहे थे। असल में वेद ने अपने डैड से वादा किया था कि वो होटल से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए उसने सोचा कि जब तक समय है यहीं दोस्तों के साथ बैठा रहे। इसी बीच अचानक कोई आवाज आई, हेलो अंकल, कैसे हैं आप? वेद ने पलट कर देखा, सामने अवनी खड़ी थी, चेहरे पर मासूम मुस्कान और आंखों में अपनापन लिए। वेद भी मुस्कुरा दिया, आओ बेटा, आओ बैठो, मैं तुम्हें अपने भाइयों से मिलाता हूं। वो तुरंत अपनी जगह से थोड़ा खिसका और अवनी को पास बैठने का इशारा किया, फिर अपने दोस्तों से बोला, ये है अवनी, हमारी छोटी सी दोस्त। सुधांशु और दीपक ने हंसते हुए उसका स्वागत किया। सुधीर ने भी हल्के से सिर हिलाकर हाय कहा। अवनी सहजता से उनके पास बैठ गई। वेद ने तुरंत वेटर को बुलाकर कहा, इसके लिए कुछ खाने को लेकर आओ। करीब 15-20 मिनट तक सब लोग हंसते बोलते रहे। माहौल एकदम हल्का और दोस्ताना हो गया। अवनी सबकी बातों में घुल मिल गई थी। उसी वक्त मानवी होटल की लॉबी में दाखिल हुई। वो लॉन में काम कर रही थी और अवनी उसके पास खेल रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब अवनी उसके पास से चली गई। वो उसी को ढूंढ रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सोफे पर गई वो ठिठक गई। वहां उसके बिल्कुल सामने वेद अपने दोस्तों के साथ बैठा था और उसके ठीक पास अवनी मुस्कुराती हुई बातें कर रही थी। मानवी की सांस जैसे थम सी गई। उसने कुछ पल वहीं खड़े खड़े देखा। वेद हंसते हुए अवनी की तरफ झुककर उससे बातें कर रहा था। मानवी के दिमाग में ख्याल आया कि लड़के वाले किसी मेहरा परिवार के हैं और वेद भी मेहरा है। वहां पर वेद ही नहीं, सुधीर, सुधांशु और दीपक भी बैठे हुए थे। वो उन सभी को पहचानती थी क्योंकि पहले वो मेहरा इंडस्ट्री में ही काम करती थी। वो तुरंत बाहर गई और उसने रीता को अवनी को लेने के लिए भेज दिया। वेद को कैसे पता चलेगा अवनी उसी की बेटी? वेदांत की साजिश कितनी कामयाब हो सकेगी?
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें। हमारे ऐप को सब्सक्राइब करना याद रखें।